फिर आप देखिए कि आयत नंबर 16 से लेकर 25 तक मलाइका की उलूहियत का तसव्वुर जो था उन लोगों के यहां, उसको अल्लाह ताला रद्द कर रहे हैं। और रद्द कैसे करते हैं, उसके दो पहलू हैं। उनमें से पहला पहलू ये है कि वो मलाइका को अल्लाह की बेटियां कहते थे। फरमाया कि इन लोगों का हाल ये है, अमित्ता खजा मिम्मा, क्या ले ली इसने इसमें से जो यखलुकू वो पैदा करता है, बनाते इन बेटियां, वो असफाकुम बिल बनीन, और खास कर दिया तुमको बेटों के साथ। तो अब यहां पर अल्लाह ताला जो है वो मुशरिकीन के अकीदे का जो भूंडापन है, जो उसकी खराबी है, उसको लाके सामने रखते हैं कि लोगों का हाल ये है कि अल्लाह ताला के लिए इन्होंने ये तसव्वुर दिया कि अल्लाह ताला के लिए हैं बेटियां। तो अल्लाह के लिए इन्होंने जो है वो बेटियां मुकरर कर दी। हाल इनका क्या है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां मुंतखिब की। खुद वो बेटियों को अहले मक्का अच्छा नहीं समझते थे, तो इसलिए ये उनकी नाइंसाफी जो है उनके सामने रखी जा रही है कि क्या ले ली इसने इसमें से जो पैदा किया था बेटियां। वो असफाकुम, और आपको पता ही है ना कि स्वात फा वो के मानी क्या होते हैं, कि किसी को उसकी तहारत और पाकीजगी की बिना पर चुन लेना, और तुम्हारे लिए चुन दी और तुम्हारे लिए खास कर दिया बिल बनीन बेटों को, तो तुम्हें बेटों के साथ मखसूस कर दिया, तुम्हें बेटों से नवाजा और अपने लिए अल्लाह ने बेटियां मुंतखिब कर ली। और खुद अहले मक्का का हाल क्या था कि आपको पता ही है कि जमाना जाहिलियत में अहले मक्का बेटियों को, औरतों को मनहूस समझते थे और उनकी पैदाइश पर सोग मनाते थे और बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते थे, कोई मकाम नहीं देते थे, कोई इज्जत और वकार नहीं था औरत का। वो समझते थे कि बेटे जंग में काम आते हैं, कमाते हैं, दौलत लाते हैं, बेटे ही सब कुछ करते हैं। तो वाइजा बुशिरा अहदुहुम, और जब खुशखबरी दी जाती है इनमें से किसी एक को, यानी किसी को भी या किसी एक को जब खुशखबरी दी जाती है, बिमा दरब रहमानी, इसके साथ जो बयान की रहमान के लिए, मसलन मिसाल कि अल्लाह ताला जो है इनको, इनमें से किसी को भी लड़की की विलादत की खुशखबरी देते हैं कि लड़की पैदा हो गई है, तो होता क्या है, जल्ला वजहू, तो हो जाता है इसका चेहरा मुसवद्दन, स्याह, काला। और यहां पे आप देख लें कि शद भी आई हुई है। तो अब क्या है कि अल्लाह ताला, यानी यहां पे रहमान का जिक्र किया जा रहा है। खास तौर पे रहमान का जिक्र क्यों आया कि बेटी जो है वो अल्लाह ताला ने मुशक्कत और मुसीबत के तौर पर किसी को नहीं दी, ये तो अल्लाह की सिफते रहमान का तकाजा है, ये अल्लाह की रहमत है बेटी। जैसे कुरान का जब जिक्र अल्लाह ताला कहते हैं कि अर्रहमान अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया तो अर्रहमान सिफत का जिक्र किया है ना, बिल्कुल इसी तरह से यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इनमें से जब किसी को बेटी की खुशखबरी दी तो साथ ही रहमान का जिक्र किया कि ये अल्लाह की रहमत का जहूर है बेटी का आना। लोगों को मुसीबत और जहमत थोड़ी है, लेकिन इनका हाल क्या हो जाता है, फिर इनका हाल ये हो जाता है कि जल्ला वजहू, कि चेहरे को अगर देखो ना तो चेहरे पर एक स्याही सी छा जाती है। और आप देखेंगे चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है, काला हो जाता है। तो बेटी की पैदाइश इनके चेहरे से भी नजर आती है, कुछ भी ना बोले बस चेहरा इसकी तस्वीर बन जाता है। और चेहरे को का ही जिक्र क्या करना, वहुआ कजीन, और जरा दिल को भी तो देखो, दिल क्या है कि गम से भरा हुआ है। और आपको पता ही है काफ जोए मीम जो है ये तस्मे के बांधने के लिए भी आता है, और इसके अलावा जो है वो ये मुश्क जो है या मश्क, ये जो पानी जिसमें होता है उसको भरकर थैली को बांध दिया जाए। अब जब थैली को बांध दिया जाए तो थैली घुट जाती है ना, उसी तरह किसी का दिल जो है वो गम से भरा हुआ हो और वो बोले नहीं, बात नहीं करे, और अंदर ही अंदर उस अपने गम को रखे, तो उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये कजीन का लफ्ज सिर्फ मुशब्बा है, और इसके मानी क्या है, सख्त गमगीन इंसान जो गम को अपने दिल में रखा हुआ है और घूंढ रहा है गम गम के अंदर, लेकिन जाहिर नहीं किसी पे कर रहा। अल्लाह ताला ने कुरान में दो पैगंबरों के लिए इसका जिक्र किया है, एक याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे यूनस अलैहिस्सलाम। शाबाश। तो अब यहाँ पे जो है वो अहले मक्का का जिक्र किया जा रहा है, जो बेटियों की पैदाइश पर उनके दिल की हालत यूं हो जाती थी कि गम से भर गए हैं कि बेटियां पैदा हो गई। और आपको पता ही है कि बेटियों को वो क्या करते थे, बाज़ औक़ात औरतों को पैदाइश के वक्त दूर ले जाते थे बाहर रेगिस्तान वगैरह में, और वहां अगर बेटी पैदा होगी तो फिर वहीं उसको गाड़ कर आ जाएंगे, और अगर बेटा होगा तो साथ ले आएंगे। कभी कभी नाराज भी हो जाते थे कि बेटा जो है वो क्यों नहीं पैदा हुआ और बेटी क्यों पैदा हो गई। और एक आदमी के बारे में आता है कि उसके यहां जब बेटी पैदा हुई तो नाराज हो गया और अपने घर ही नहीं आया, अपने हमसाये के घर जाकर रहने लगा। और उसकी बीवी ने जो है वो शेर के बड़ी अकलमंद थी, कहने लगी माले अभी हमजा, क्या हो गया अभी हमजा, ला या तीना के नहीं आता हमारे पास, यानी हमारे पास घर में नहीं आता, या जुल्लु फिल बैत अल्लजी वलीना गदबान, के घर में हमारे पास जो है वो नहीं आता और साथ वाले घर में है गुस्से की हालत में गदबान। अल्लाह वलदीना, क्या हो गया है कि अगर हमारे पास बेटा नहीं आया, वह इन्नमा ना खुजु मा उतीना, हम तो वही लेते हैं जो हमें दिया जाता है, तो हमारा क्या कसूर है कि अगर हमारे पास जो है वो बेटा पैदा नहीं हुआ और बेटी पैदा हो गई। तो बड़ी अक्लमंद थी वो औरत कि उसने ये बात कही। और आपको पता है कि औरतें बहुत इल्म रखती थी। तो अब आपको पता है ना कि बेटा जब पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि मर्द का जो क्रोमोसोम्स है वो जब गालिब आते हैं तो बेटा पैदा होता है ना, औरत का गालिब आ जाता है तो फिर बेटी पैदा हो जाती है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अब उसमें क्या है कि अगर औरत जो है वो बेटे को पैदा नहीं कर रही तो औरत का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। तो बहरहाल बात में क्या है कि अब अहले मक्का की दिल की कैफियत भी और उनकी जहरी कैफियत उसको खोला जा रहा है। यहां पर थोड़ी देर के लिए हम भी रुक कर सोचें हमारा आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है। आज भी हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश पर शोक मनाया जाता है, बेटा पैदा हो जाता है तो मिठाइयां बांटते हैं और वाह बे वाह बेटा और बहू के आगे पीछे, और बहुत उसकी खातिर मदारत होती है बीवी की। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो गोया के सारे अरमान ही खत्म हो गए और उस पर जो है ना मुबारकबाद ना मिठाई। मुझे पता नहीं था, मैं नौवीं दसवीं में पढ़ती थी और मेरी एक क्लास फेलो के जो है वो भतीजी पैदा हुई और मैंने मुबारकबाद दी तो उसके वो नाराज हो गए उसके घर वाले कि ये देखें जरा आप तो खुशी मना रही हैं और हमारे घर भतीजी पैदा हुई है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि क्या इसके ऊपर भी मतलब जो है वो शोक मनाया जाता है। तो हालांकि कुरान की इतनी समझ नहीं थी लेकिन वैसे कि अल्लाह की एक नेमत है तो खुशखबरी जो है उसके आने पर जो है वो मुबारकबाद दी। तो वो लड़की नाराज होगी कि मेरी भाभी ने बहुत बुरा मनाया है और खुद भी वो नाराज। और आज भी आप देखें कि बाज़ लोग बुरा मानते हैं और चेहरे से ही अंदाजा करें। तो बहरहाल अगर आज हमारे अंदर ये चीज पाई जाती है तो जाहिलियत के आसार आज भी हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं कि अवा, और वैसे औ जो है या के मानी भी आते हैं ना, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या के मानी है कि अवा मई युनशाउ फिल हिलियती, क्या वो जिसकी परवरिश की जाती है और परवान चढ़ाना उसको उभारना उसको पालना, तो जिसकी परवरिश की जाती है फिल हिलियती जेवर में। और हिलिया जो है ये जेवर के लिए आता है और इसकी जो है वो जमा है हुलन हालाम या, साथ जोड़ लीजिए तो हुलन। तो मानी क्या है कि वो लड़कियां जो परवरिश की जाती हैं जेवर में, वाह हुआ फिल खिसाम गैरु मुबीन, और वो खिसाम में गैर वाजे हैं। और खिसाम का मतलब तो आपको पता ही है ना कि झगड़े में जो है वो क्या करना कि दूसरे पर गालिब आना है ना। तो यहां पर ये बात कही जा रही है कि वो झगड़े में जो है वो गैर वाजे हैं। तो ये जो खसम का लफ्ज है ये फरीके मुकदमा के लिए भी आता है, और जब मुकदमा हो तो फरीके मुकदमा क्या करता है, वो ये चाहता है कि दूसरे पर जो है वो हुज्जत के जरिए दलील के जरिए जो है वो गालिब आ जाए। और वैसे खसम जो है خاص طور پر کہتے ہیں کہ ایسے فریق مقدمہ کو جن کے درمیان حقوق کا جھگڑا ہو، تو دونوں آپس میں جو ہیں وہ حقوق کے دعوے دار ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب عورتیں جھگڑتی ہیں، لڑکیاں جھگڑتی ہیں تو غیر واضح ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ دو باتیں سامنے لا کر رکھی گئی ہیں، اور دو باتوں میں سے ایک کیا ہے کہ عورت زیور میں پرورش کی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ینشاؤ نشو جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنا بھی اور نشو نما دینا بھی، پالنا بھی اور اس کی ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا۔ تو عورتوں کی تربیت اور نشو نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے، شعور کی آنکھ کھولتے ہی ان کی توجہ جو ہے وہ جمال حسن زینت کی طرف ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیور پہننا یہ عورتوں کا فطری حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اولاد جیسے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ حضرت زید کو جو ہے وہ اپنا منہ بولا بیٹا پہلے بنایا ہوا تھا نا، تو حضرت اسامہ سے بھی آپ بہت محبت کرتے تھے اولاد کی طرح، آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے، آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے اور ان کو یہ کہہ کر بہلاتے جاتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے، دل بہلا رہے تھے اور ساتھ اس کو روتے کو چپ کروا رہے تھے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ جب دو عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا حق کیا؟ کہا ان کی زکات ادا کرو۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ عورتیں نرم و نازک ہوتی ہیں، ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حسن و جمال جو ہے ان کا فطری حق ہے، عورتیں زیور میں پالی جاتی ہیں، تو لیکن یہ کہ زیور کی ان کو زکات جو ہے وہ نکالنی چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ زیور پہننا یاد رہے اور زیور کی زکات نکالنا ہم بھول جائیں۔ پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اب چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مخلوق جو زیور میں پالی جاتی ہے اتنی نرم و نازک، تو تمہارا دیکھو تمہاری دھاندلی کیسی کہ اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں۔ اچھا دوسری بات کیا کہ وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے، بحث میں اپنا مدعا پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اصل میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کبھی بحث اور تکرار کی بات ہو تو عورت کے اندر ایک فطری حجاب سا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ عورت جذبات سے بھری ہوئی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ دلائل سے بات کا توڑ نہیں کر سکتی۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ساری عورتیں ایسی ہیں کہ وہ صحیح سے بات نہیں کر سکتی، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، اور تربیت کے لیے جذبات بہت ضروری ہیں، مرد کا کام ہے کمانا، تو مرد کے لیے جسم کی مضبوطی ضروری تھی، تو اس کو جسم مضبوط دیا، اور عورت کو بچوں کی تربیت کی وجہ سے جو ہے وہ بہترین جذبات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو معنی یہ ہے، اور آپ پہلے بھی پڑھ چکی کہ چونکہ عورت نے گھر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر عورت کمزور ہے، مرد کو باہر کام کرنا ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ صحیح طرح بات نہ کر سکنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ सही तरह बात नहीं कर सकती या दलाइल से बात नहीं कर सकती, बल्कि बात क्या है कि होता यह है कि अक्सर चूंकि औरतें जज्बाती होती है ना, तो जब बात हो रही हो तो दलाइल से बात करने की बजाय हंगामा करना शुरू कर देती हैं, लड़ाई करना शुरू कर देती हैं, या फिर ये है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि अपने मौकफ की हमायत में कौन सी दलील दें और मुखालफत में कौन सी दें। बस टू दी पॉइंट बात करने की बजाय शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना शुरू कर देती हैं। तो फिर इसके मानी क्या हैं कि औरतें जो हैं वो गुफ्तगू उस अच्छे तरीके से नहीं कर पाती जैसे कि मर्द कर लेते हैं। और आप देख लें कि औरतें बातें वैसे ज्यादा करती हैं ना, मर्द बातें कम करते हैं लेकिन अच्छी बातें करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें, यानी औरतों के अंदर बाकायदा पैदाइशी तौर पर यह कमजोरी पाई जाती है कि वो अच्छे से बात कर ही ना सकें। याद रखिएगा यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है औरतों का, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, अल्लाह ताला मर्द और औरत का कंपैरिजन नहीं कर रहे कि मर्द अच्छा है या औरत। ये आप पहले पढ़ चुकी कि अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा ज्यादा दिया है और औरतों का एक दर्जा कम है, और वो क्या है कि कामों की तकसीम के लिहाज से। बाकी ये कि मर्द हो या औरत, जो भी नेक काम करेगा और ईमान लाएगा और नेक काम करेगा तो अल्लाह के यहां हर एक का मकाम उसके अमलों के मुताबिक है। यहां पे असल में खालिक और मखलूक का कंपैरिजन किया जा रहा है कि अहले मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो अल्लाह ताला जो है वो सवाल के तौर पर उनके सामने एक बात रख रहे हैं कि तुम ही बताओ ये बात कि बेटियां जो कि कमजोर हैं, जिनको वो विरासत में हिस्सा भी नहीं देते थे, पसंद भी नहीं करते थे, सोग मनाते थे, परेशान हो जाते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे, और नर्म और नाजुक सी बेटियां। और आमतौर पर आप देखें कि औरतों के अंदर एक हिजाब सा होता है, बात नहीं कर पाती ना, तो ये उनकी जो फितरी कमजोरी है उसका जिक्र किया जा रहा है कि तुम अल्लाह के लिए उनको पसंद करते हो। वजअलुल मलाइकाता, और मुकर्रर किया उन्होंने फरिश्तों को, वजअलुल मलाइकाता और मुकर्रर किया उन्होंने फरिश्तों को, अल्लज़ीना वो जो हुम इबादुर रहमानी इनासा, कि वो बंदे हैं रहमान के। अब आप देखिए कि यहां पे जो है वो अहले मक्का की एक और बात जो है उसका जिक्र किया जा रहा है, और वो क्या है कि इन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कह दिया, इनासा कह दिया, गोया के औरतें करार दे दिया। और वो हैं क्या, हुम इबादुर रहमानी, कि वो तो अल्लाह के खास बंदे हैं। इसके मानी क्या है कि बात मुजक्कर और मुन्नस की नहीं है, और बंदे का मतलब क्या है, वो तो अल्लाह की अतात करने वाले हैं। इसका ये नहीं मतलब कि बशर हैं, ये मतलब नहीं है, बल्कि क्या है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की अतात करने वाले हैं, वो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, है ना। तो जिस तरह और अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है, तो उन्होंने जो है वो फरिश्तों को क्या कहा कि वो अल्लाह की बेटियां हैं। अशाहिदु खल्कहुम, क्या वो हाजिर थे इनकी पैदाइश के वक्त। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो कोई अंदर से बाहर निकल कर ये कहता है कि बेटी पैदा होगी, और कोई कहता है कि बेटा पैदा हो गया, तो जो पैदाइश के वक्त मौजूद होता है वो खबर देता है, सबको फोन करके बताता है, ईमेल भेजता है कि ये हो गया है, है ना। तो अब पूछा जा रहा है अहले मक्का से कि क्या जब फरिश्तों को पैदा किया गया तो क्या अहले मक्का तुम वहां पे मौजूद थे। सतुक तबू शहादतुहुम, अनकरीब लिखी जाएगी इनकी गवाही, वयुस अलून, और इनसे पूछा जाएगा। यहाँ पे दो बातें कही जा रही हैं, और ये वाली बात कि इनकी गवाही ली जाएगी, कि फरिश्तों को जो ये अल्लाह की बेटियां कहते हैं तो क्या इनके पास कोई दलील, कोई गवाही है, इनसे गवाही ली जाएगी। और दूसरी बात क्या कही जा रही है कि इनका मुहासबा होगा, इनसे पूछा जाएगा। तो मानी क्या है कि ये जो फजूल बातें और शिरकिया बातें कहते हैं तो अल्लाह ताला इनको यूं ही थोड़ी छोड़ देंगे, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला इस पर कुदरत रखते हैं कि अल्लाह ताला इनसे पूछें कि जब फरिश्तों की तखलीक की गई थी तो क्या ये उस वक्त मौजूद थे। तो इनका ये दावा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, ये नामा माल में लिख लिया गया है, अब इनसे पूछा जाएगा। और कयामत के दिन ये जो गुफ्तगू करते हैं ना फरिश्तों की बेटियों के बारे में, इस सिलसिले में इनसे जो है वो हिसाब किताब होगा, मुहासबा होगा। तो गोया के ये जो शिर्क करते हैं तो इनके शिर्क करने के लिए इनके पास कोई भी दलील नहीं है। तो ये आयात की आपको समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पे सवाल आया आपका कि आयत नंबर 18 में हुआ आया है, तो हुआ जो है ये क्यों आया है, इसकी वजाहत करें। तो असल बात क्या है कि यहाँ पे पहले मन आया है ना, कि जो पाली जाती हैं जेवर में, और फिर आया है कि वहुआ फिल खिसामी गैरु मुबीन, और वो बहस में जो है वो गैर वाज़े हैं। तो बाज़ औक़ात अरबी जबान का ये कायदा है कि आम तौर पे इसमें जो सीगे और जमीरें होती हैं ये आम तौर पर मुज़क्कर ही इस्तेमाल की जाती हैं और सब मुराद लिए जाते हैं उससे, और कभी कभी जो है वो मौके की मुनासबत से मुन्नस के लिए मुन्नस आ जाता है और मुज़क्कर के लिए जो है वो मुज़क्कर आ जाता है। तो बहरहाल असल में अहले मक्का का ये जो था ना उनका बातिल अकीदा, उसको रद्द किया जा रहा है। इसमें आप परेशान मत होइएगा कि औरतों की यहाँ पर जो है वो नक्स का इजहार कर दिया गया, क्योंकि बाज औरतें इस बात पर बहुत बरहम होती हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ती हैं कि कैसा कुरान है कि जिसमें औरतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सही तरह बात भी नहीं कर सकती, है ना। तो असल बात आप याद रखिएगा कि औरत को अल्लाह ने बड़े हुकूक दिए हैं और बहुत जो है वो दर्जा और मर्तबा अता किया है। तो ये तो जस्ट एक उनका जो मुशरिकाना जो अकीदा था उसको रद्द किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि औरतें नरमो नाजिक भी हैं, जेवर में पाली जाती हैं, और उसके साथ आम तौर पे जब बात करती हैं तो औरत आप देख लें हम रो पड़ते हैं और मर्द जो है वो मजबूत होते हैं, आसाब वाले और बात कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो अहले मक्का का जो एक इतराज था कि वकालू, और वो कहते हैं लौशा अर रहमानू, अगर चाहता रहमान मा अबदना हम ना हम इबादत करते इनकी। अब आप देख लीजिए कि अहले मक्का का ये जो है वो कहना कि क्योंकि अल्लाह हमारी इबादत से खुश नहीं है ना, हम शिर्क जो करते हैं, और अगर अल्लाह को हमारा शिर्क करना ना पसंद है तो फिर हम ऐसा ना करते, अल्लाह हमें जबरन क्यों नहीं रोक देता। तो असल में हम जो फरिश्तों की इबादत करते हैं या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं तो अल्लाह तो हमें कुछ भी नहीं कहता। अकालू लौ शा अर रहमानु मा अबदनाहुम। अब यहां पे देखें कि उनकी हुज्जतबाजी और सामने लाकर रखी जा रही है, और वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, नहीं इनको इसका कुछ भी इल्म, इन्हें इसकी कुछ भी खबर नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह की मशीयत को समझते नहीं कि अल्लाह की मशीयत और है और अल्लाह की रजा जो है वो और है। दुनिया इम्तहान गाह है, अल्लाह ताला सबका इम्तहान ले रहे हैं, और अगर किसी को जो है वो उसके गुनाह करने से फौरन रोका नहीं जाता, उसका हाथ नहीं पकड़ा जाता, उसकी नजर को सल्ब नहीं कर लिया जाता, तो उसकी वजह क्या है कि ये फिर जबर हो जाएगा ना, अगर रोका जाए तो ये जबर है और इम्तहान का मकसद फौत हो जाएगा। तो अल्लाह की मशीयत क्या है कि अल्लाह ताला जो है कोई काम भी अपनी मशीयत के बगैर नहीं करता है, तो अल्लाह को नापसंद, लेकिन अल्लाह ताला रोकता नहीं है, इसलिए कि एक मोहलत दी हुई है, एक वक्त दिया हुआ है जिसमें लोगों के पास आजादी है, इख्तियार है, चाहे तो अच्छा काम करें चाहे तो बुरा काम करें, फिर अल्लाह ताला इनको जो है वो पकड़ेगा, पूछेगा और इनका मुहासबा करेगा, और अल्लाह नेक कामों पर राजी होता है। मसलन आप देखें कि उस्ताद है, तालिबीन को सिखाता है, ठीक है, फिर तालिबीन इम्तहान देते हैं, इम्तहान जब बच्चे दे रहे होते हैं उस्ताद चल फिर रहा है, देख रहे हैं, पेपरों पर नजर पड़ रही है। बाज़ुकात मैं भी आपको देखती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि हाथ पकड़ के आपको रोक दूं कि ये क्यों लिख रही हैं, ये तो गलत है, लेकिन मैं आपको नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? इसलिए कि इम्तहान हो रहा है, इम्तहान में अगर पकड़ कर रोक दिया जाए, बता दिया जाए, तो फिर इम्तहान का मकसद फौत हो जाता है। फिर बाद में बताया जाता है कि ये गलती तुमने क्यों की जबकि पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था और कितनी दफा पढ़ाया था। तो रिजल्ट बाद में अनाउंस होता है और पेपर की तैयारी जो सिलेबस है वो पहले सिखा दिया जाता है, इम्तहान में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई मुदाखलत नहीं है। बिल्कुल इस मिसाल से हम इसको समझ सकते हैं कि दुनिया में जो अच्छा कर रहा है उसको भी कुछ नहीं कहा जाता, छोड़ दिया जाता है, जो बुरा कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी छोड़ देते हैं, जो अच्छा करना चाहता है उसके लिए अच्छाई के रास्ते आसान कर देते हैं, जो बुरा करना चाहता है उसके लिए बुराई के रास्ते आसान कर देते हैं। तो यही बात है कि मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, कि इनको जो पकड़ा नहीं जाता, रोका नहीं जाता, गिरफ्त नहीं की जाती, इसका इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनहुम इल्ला यखरसून, मगर वो कयास अराइयां करते हैं। ये आपने बहुत शुरू में पढ़ा था, खारा स्वाद का मतलब होता है दरख्त के ऊपर फल हों और उनका अंदाजा लगाना। अब दरख्त पर जो फल होता है कयास अराई होता है ना, आप एक अटकल पिचू से काम लेते हैं, एक अंदाजा करते हैं, एक जन और तखमीना होता है। तो जन और तखमीन से खजूर के दरख्तों पर फलों का अंदाजा करना उसको कहते हैं खरिसा, और अंदाजा करना भी और अंदाजा किए फल को भी खरिसुन कहते हैं। तो क्या है कि ये जो इनकी बातें हैं कि अल्लाह पकड़ता नहीं है, तो बस ये इनकी ऐसे ही अंदाजे हैं, कोई यकीन और गुमान नहीं है इनके पास कि अल्लाह पकड़ता नहीं, तो ये सच्चाई पर है। आतेना हुम किताबम मिन कबले ही फहुम बेही मुस्तम सिकून, क्या दी गई थी हमने इनको कोई किताब, क्या हमने इनको कोई किताब दी थी इससे पहले, और बस वो इसको मजबूत पकड़े हुए हैं। और आपको पता ही है कि अहले मक्का जो शिर्क कर रहे हैं और बहुत से उनके अंदर बुराइयां आ चुकी थी, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि कोई दलील लाए ये लोग कि कुरान से पहले कोई ऐसी किताब थी कि जिसमें इनके अकायद लिखे हुए थे जिसमें ये अमल करते हैं। और आपको पता ही है कि मुस्तमसिकून जो है ये इसका रूट क्या है, मीम सीन काफ और पकड़ना, और पकड़ने के लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं। आपने अभी बच्चा भी पढ़ा ना, तो वो है कैसे पकड़ना, मजबूती से कुव्वत से पकड़ना। और अमसका के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, पहली चीज ये कि जो मौजूद चीज है उसको हाथ से जाने ना देना, उसको पकड़ के रखना। दूसरा क्या है कि उसको उससे चिमट जाना, मजबूती से पकड़ लेना। जैसे आपने पीछे औरतों के बारे में पढ़ा था ना कि या तो औरतों को तलाक दीजिए या फिर ये इमसिक उसको रोक लीजिए, तो औरत पहले से मौजूद है ना, तो औरत को क्या कर, या तो उसको रोक ले, उससे चिमट जा। चिमट जा मुराद क्या है कि शादीशुदा जिंदगी गुजारो, मियां बीवी बन के रहो, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। तो आप मसलन आप इसको चाबी से याद रखें, चाबी आपके पास होती है, आप लॉक करके घर को निकलती हैं, चाबी को आप हाथ में पकड़ लेती हैं, फिर क्या करती हैं, क्योंकि वो बहुत कीमती और अहम चीज होती है, फिर आप उसको रोक लेती हैं, चिमट जाती हैं, उसको मजबूती से पकड़ती हैं, छोड़ती नहीं है। पीछे आपने पढ़ा था बिल उर्वतिल वुस्का, जब पढ़ा था तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि जिसने इस्लाम के सहारे को मजबूती से थाम लिया। हाँ, तो असल उसके बाद ही आयतुल कुर्सी के साथ ही ये आयात हैं। तो यहाँ पे भी ये इसके मानी क्या हैं कि कोई ऐसी किताब है कि जिसको इन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ। अच्छा, मजबूती से पकड़ना ये नहीं है कि जैसे ये मेरे पास कुरान है और मैंने इसको ये पकड़ लिया दोनों हाथों में मजबूती से, क्या मानी है इसके, उसमें अमल करना कि इनके पास कुरान से पहले कोई ऐसी किताब है कि जिसके ऊपर अब ये चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो दूसरी दलील यहाँ पे दी जा रही है, और दूसरी दलील क्या है, ये कहते थे बलकालू, बल्कि ये कहते हैं इन्ना वजदना आबाना, कि हमने पाया अपने बाप दादा को, अला उम्मतिन, एक तरीके पर। उम्मत जो है इसके क्या मानी होते हैं, इसके मानी जो हैं वो तरीके के भी होते हैं, जमात के भी होते हैं, है ना, मजहब और दीन के भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या ये कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि बेशक हमने पाया है अपने बाप दादा को एक मजहब पर, एक तरीके पर, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है शिर्किया तरीका। वइन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और हम उनके कदमों के निशानों पर, और हमजा सारा के मानी क्या होते हैं, कदमों के निशान, है ना, आसार, कोई चल जाता है, चला जाता है तो फिर पीछे जो उसके कदमों के निशान रह जाते हैं। मसलन अब बर्फ का तूफान है, बाहर बर्फ अभी हटाई नहीं गई, स्नो बहुत ज्यादा हुई, कई इंच है, अब जो वहां से चलकर गुजरा है, आप चलती हैं तो उसके कदमों के निशान पर, आपके लिए आसानी हो जाती है ना, तो किसी के कदमों के निशान पर चलना। तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा का एक तरीका था, ये जो शिर्किया तरीका है ना, हमारे बाप दादा का तरीका है और हम उन्हीं के कदमों के निशानों पर हैं, मोहतदून रास्ते पे चल रहे, उन्हीं के कदमों के निशानों पर जो है हम पैरवी करने वाले हैं, हम चलने वाले हैं, राह याफ्ता हैं, राह पा रहे हैं। तो पहली जो थी वो दलील अल्लाह ताला ने क्या दी थी कि अपने लिए बेटियां ना पसंद करते हैं और रहमान के लिए फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। दूसरी दलील क्या दी कि ये कहते हैं कि बाप दादा ही की तरफ से ये मुशरिकाना तरीका मिला है। वकजालिका मा अरसलना मिन कबलिका, और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुझसे पहले फी करियतन किसी बस्ती में, मिन नजीरिन कोई डराने वाला। अब यहां पे ना असल वजह बताई जा रही है कि ये झूठ कहते हैं, ये जो बाप दादा की तकलीद करते हैं ना और कहते हैं कि हमारे बाप दादा का मजहब और तरीका यही था, तो असल वजह ये नहीं है इनकी नाफरमानी की, बल्कि असल वजह क्या है कि इसी तरह जब भी हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला भेजा तो क्या हुआ, जब भी कोई डराने वाला आया, इल्ला मगर काला मुतरफुहा, कहा इसके खुशहाल लोगों ने। तो मुतरफ कौन होते हैं? खुशहाल लोग, ऐश परस्त, दौलतमंद। और मुतरफ का रूट क्या है? ताराफा। और मुतरफ वाहिद है और मुतरफून जमा है और नून गिर चुका है जमा का। तो उसके खुशहाल लोगों ने, अमीर लोगों ने क्या कहा, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन, बेशक हमने पाया अपने बाप दादा को एक तरीके पर, व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर पीछे चलने वाले हैं। तो असल वजह क्या है? मुतरफून, दौलत। दौलत के नशे ने जो वो अमीर लोग थे उनको गुमराह किया, और ऐशो इशरत में रहने की वजह से उन्होंने जो है वो क्या कहा कि रवायती दलील दी, और उन्होंने पैगंबर की तर्दीद की। उन्होंने क्या कहा कि हमारा ज्यादा एतमाद जो है वो अपने अबाओ अजदाद पर है, और हमारे अबाओ अजदाद जो थे वो एक उम्मत पर थे, और उम्मत जो है किसी कौम के मजमुई तरीके को भी कहते हैं। एक कौम का जो मजमुई मसलक होता है ना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कौम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके मजहब के लिए भी आता है। तो अब ये बात किसने कही कि हमने अपने अबाओ अजदाद को एक मजहब एक तरीके पर पाया? मुतरफीन ने कही। तो वजह दौलत का नशा है। वइन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर, हम उनके कदमों के निशान पर मुक्तदून पीछे चलने वाले हैं। अब आप देखिए कि यहां पे मुक्तदून आ गया, और मुक्तदून का रूप क्या है? काफ दाल वो, काफ दाल वो, और इसके मानी होते हैं अताक करना, किसी की ऐसे पैरवी करना जैसे कि वो काम कर रहा है। अकदा, नेकी और दीन के रास्ते में पैरवी करना। और मुक्तदी होता है नमाज की हालत में इमाम की इक्तदा करने वाला, आप मुक्तदी से याद रखें, इमाम की पैरवी करने वाला। वैसे नेकी में जो है पैरवी करना, लेकिन ये इक्तदा का लफ्ज बुरे मफहूम में भी आता है, क्योंकि यहां पे आप देखें बुरे मफहूम में है ना। और कुदवा किसे कहते हैं? कुदवतुन, इंसान की वो हालत जब वो किसी दूसरे का पैरोकार हो, और कुदवा रहनुमा और लीडर को भी कहते हैं। एक होता है उसवा और एक होता है कुदवा, दोनों में ही अताअत की जाती है, फर्क क्या है? उसवा जो है, नहीं अब मैंने तो ये बताया कि आप तो मुक्तदी भी बोलते हैं ना, इमाम की पैरवी करते हैं तो वो भी तो अच्छी होती है ना, है दोनों पैरवी करीबुल मानी है। फर्क ये है कि जो उसवा है ना, उसमें पहलू पाए जाते हैं तसल्ली के, हमदर्दी के जज्बात भी पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए कि जो है वो अरबी जबान में आसी, आसी किसे कहते हैं? मरहम पट्टी करने वाला। और जो मरहम पट्टी करता है वो क्या करता है? वो असल में मरहम ही जब जख्मों पर रख दी जाती है तो इंसान की जो है वो जो भी बीमारी है, जख्म है, तो उसके लिए एक तसल्ली हो जाती है। बाज़ औक़ात आप जरा पट्टी कर दे, कुछ भी ना लगाएं, देखने वाले ने देखा नहीं है जिसके की जा रही है, उसके लिए इतना ही काफी है कि पट्टी हो गई है। थोड़ी देर बाद आप पूछना शुरू करें, कहेगा मेरा फॉर्म काफी ठीक हो गया है ना। तो असल में ये लफ्ज आता है अताद के लिए, तो उसवा कहते हैं आपस में हमदर्दी और गम गुसारी का पहलू, ऐसा नमूना जिससे तसल्ली भी हो। आसी है मरम पट्टी करने वाला, तबीब सुलह करने वाला। तो उसवा का लफ्ज जो है ये कुदवा से ज्यादा बलीग है। अतात में कुदवा का दूसरा दर्जा है और उसवा का तीसरा, और वैसे कुरान में आए हैं 8 लफ्ज। ठीक है, तो बहरहाल इक्तदा के मानी में है यहाँ पे। और अब वो ये कहते हैं कि हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने अबाओ अजदाद के पीछे चल रहे हैं। और किसने कहा अबाओ अजदाद के पीछे चले यहाँ पे, किसने कहा? मुतरफून ने कहा। और मुतरफून कौन होते हैं? अमीर लोग, है ना। पाला इसने कहा अबालाऊ जे तुकुम, क्या मैं लाऊं तुम्हारे पास भी आहदा ज्यादा सीधा। आहदा इसम तफसील है कि ये जो तुम शिरकिया काम कर रहे हो, ये जो अबाउजदाद की अंधी तकलीद कर रहे हो, क्या अगर मैं इससे भी ज्यादा सीधा रास्ता लाऊं, मिम्मा इससे जो वजद तुम अलेही आबा अकुम, जिस पर पाया तुमने अपने बाप दादा को, तो अगर मैं इससे भी ज्यादा सही रास्ता लाऊं, दलील लाऊं, तो क्या फिर भी तुम अपने बाप दादा की पैरवी करते चले जाओगे, तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे बाप दादा की अंधी तकलीद से ज्यादा बेहतरीन रास्ता तुम्हें लाकर बताता हूँ, या तरीका या मजहब बताता हूँ। कालू कहा उन्होंने इन्ना बिमा उर्सिल तुम बेही काफिरून, बेशक हम इसके साथ जो तुम भेजे गए हो इसका इनकार करने वाले हैं। काफिरून, काफिर की जमा है काफिरून। तो मानी क्या है कि हम जो है हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते रहे, और जो तुम देकर भेजे गए हो हम इसका इनकार करने वाले हैं। मुराद क्या है कि बाप दादा की अंधी तकलीद में हम इतने पुख्ता हैं कि अब पैगंबर की कोई दलील, पैगंबर पैगंबर का जो है वो समझाना हमें जो है वो हमारी शिर्क के रास्ते से जो है वो हटा नहीं सकता। तो आप कुरान में बहुत दफा ये बात पढ़ चुकी कि लोगों के सिराते मुस्तकीम से हटने की, तौहीद से हटने की एक बड़ी वजह यह थी कि लोग जो थे वो अपने अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करते थे, है ना। और आप देख लीजिए सूरत यासीन में भी जो है वो क्या बात पता चलती है कि जब फरिश्तों ने उनको जाकर समझाया और उनको कहा कि तुम जो है वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो इख्तियार करो, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, इनकार किया। और उन्होंने क्या कहा कि हम तो अपने अबाउ अजदाद के पीछे ही चलने वाले हैं, है ना। आप देख लीजिए लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। तो और ये जो बात है कि इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अज़कानी फहुम मुक़महून, तो ये भी क्या है कि अबाओ अजदाद की रस्मों की जो तकलीद है ये उसकी जंजीरें हैं जिसमें जकड़ दिए गए हैं, इसलिए इनको अब कोई बात जो है वो समझ में आती ही नहीं। तो कुरान में हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कौमों ने झुटलाया, कौमें आद देख लें, समूद देख लें, फिरौन देख लें, बहुत सी कौमों का जिक्र है। तो इन्होंने भी यही बात कही और पैगंबर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी चीज ला कर दूं, और जो पैगंबर लाएगा तो कहां से आएगी, वो तो अल्लाह की भेजी हुई है ना। लेकिन वो दलील को मानने को तैयार ना हुए और फौरन कहने लगे कि बेशक हम इसके साथ जो तुम भेजे गए हो हम इसका इनकार करने वाले हैं। फन तकमना मिनहुम, फिर इंतकाम लिया हमने इनसे। फनजुर, फिर देख, कई फकाना आकिबतुल मुकज्जिबीन, कैसा हुआ अंजाम झुठलाने वालों का। मुकज्जिब की जमा है मुकज्जिबीन। तो इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बताते हैं कि वो कौम जो कि अल्लाह का इनकार करती है तो फिर उसका जो है वो क्या अंजाम होता है। तो तकलीद आबा जो है ये कौन करते हैं, कौन इसकी तायीद करते हैं? मुतरफीन। दूसरी बात ये कि तकलीद आबा सबसे बड़ी गुमराही है, تیسری بات یہ کہ گناہوں پر مشیت کی دلیل غلط ہے، اس لیے کہ دنیا میں امتحان ہو رہا ہے. کوئی طالب علم یہ کہے کہ امتحان دیتے وقت میں غلط لکھ رہی تھی تو ٹیچر نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے جو میں نے غلط لکھا ہے وہ ٹھیک مانا جانا چاہیے. تو یہ دلیل نہیں ہے کسی طالب علم کے غلط لکھنے کی. کوئی ظالم اور ڈاکو یہ کہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، اگر میں غلط کرتا تو اللہ پھر مجھے روک دیتا نا، تو اللہ روکتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے. یاد رکھیے گا، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مشیت الہی کے تحت ہو رہا ہے. تو رضا الہی کیا ہے؟ وہ کتاب کے اندر ہے، وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن کو کھولیں، رضا الہی کو جانیں، اور پھر اپنی زندگی کے اندھیرے جو ہیں اندھیروں کو روشنیوں سے بدل دیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے سبق میں کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ آئی کہ توحید، ایک اللہ کی بندگی کریں. تیسری بات کیا آئی کہ آخرت کی تیاری کریں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اور چوتھی بات ہمارے سامنے کیا آئی کہ کائنات اور ہمارے جسم کے اندر جو دلائل ہیں ان سب سے جو ہے ہم اللہ کو پہچانیں. کیوں؟ الذی جعل لکم الارض مہدا. اور کبھی کہا کہ من خلق السماوات والارض، اگر ان سے پوچھو تو کیا جواب دیں گے؟ اور ساتھ ہی کہا والذی خلق الازواج کلہا. تو یہ سارے دلائل جو ہیں ہمیں کیا توجہ دلاتے ہیں کہ انا الی ربنا لمنقلبون، اور کیا توجہ دلاتے ہیں کہ ہم بھی مقرن بن جائیں، ہم بھی عطاعت کرنے والے بن جائیں. تو یہ جو حجت بازیاں ہیں، اور اہل مکہ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور کیا کہتے تھے کہ ہمیں اباؤ اجداد سے یہ دین ملا ہے، اور اباؤ اجداد کیا کہتے کہتے چلے گئے؟ اباؤ اجداد تو اہل مکہ کو سمجھاتے ہی چلے گئے. فوصى بها ابراهيم، فوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، سورۃ البقرہ آیت 132 کو آپ دلیل ملا سکتے ہیں نا. انہوں نے تو لا الہ الا اللہ کہا، اسی کی وصیت کر گئے، اور آگے یعقوب علیہ السلام بھی، اور یہی آگے آگے وہ کرتے گئے نا. لیکن افسوس کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ ہمیں اباؤ اجداد سے ہی شرکیہ دین ملا ہے. تو یہ ہیں وہ سب آیات جو ہمیں بھی جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں. اور پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں. تو ہوم ورک پھر کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور ہماری زندگی میں جو شرکیہ رسوم ہیں، جو اباؤ اجداد کی اندھی تقلید ہے، اس کو جو ہے وہ نکال باہر کیا جائے. آپ سب خود لے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کون سی ایسے رسم و رواج ہیں جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، اور آپ بھی آنکھیں بند کر کے اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کی فہرست بنائیں، اور پھر اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا کردار ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، پھر عقیدہ جو ہے اگر ٹھیک ہے بھی کہ ہاں ایک اللہ کو ماننا ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے عبادات میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، مرنے اور جینے میں، بہت سی رسمیں ہم نے شامل کر لی ہیں. عقیدہ ٹھیک ہے اور زندگی کو اس طرح مشکل بنا دیا ہے. تو آئیے اپنی زندگی کو آسان کریں، اور رسموں کی جو زنجیریں ہیں ان کو کاٹ پھینکیں. تو سیرت پہ عمل کیجئے، کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کے زنجیر پڑی ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت سی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، چراغاں ہو رہا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، دیگیں دی جا رہی ہیں، اور ڈھول ڈھمکا بھی ہے، اور کھانے بھی ایک دوسرے کے گھر بھیجے جا رہے ہیں. اور ایک دن سیرت کا جلسہ کر کے، اور اگربتیاں لگا کر، اور خوشبوئیں جو ہیں بکھیر کر، اور کوئی درود کی محفلیں منعقد کر رہا ہے، اور کوئی سیرت کے جلسے منعقد کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیرت کا جلسہ نہیں ہو سکتا، یا پھر درود شریف ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک دن پڑھ لینا، اور 300 ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ہوتے ہیں نا. 364 دن پھر سیرت رسول کو بھولے رہنا، یہ جو ہے یہ ربیع الاول کا احترام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنے کا نام نہیں ہے. उसको आशिके रसूल नहीं कहते, तो सच्चा रसूल, सच्चे रसूल की सच्ची पैरवी करने वाले वो हैं जो रसूल अल्लाह के उसवे के पीछे चलें। और आज जो भी ये सीरत की महफिलें मुनक्कद की जा रही हैं या दुरूद की जो महफिलें हैं, तो उसमें हम देखें कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने रसूल अल्लाह से मोहब्बत नहीं की थी? क्या वो साल में कोई ऐसा एक जलसा करके फिर पूरे साल फारिग रहते थे? कभी आपने देखा कि उन्होंने भी कोई ऐसा जलसा किया हो और उन्होंने भी दुरूद की कोई ऐसी महफिल मुनक्कद की हो, और जिसमें खास तौर पे लोग क्या कहते हैं कि अब महफिल से निकल जाए जो बेअदब हो, और फिर खड़े हो जाएं और फिर ये सोचना कि रसूल अल्लाह महफिल में आए हैं? तो आप खुद ही बताइए कि क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत के तकाजे ये हैं? तो क्या है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह मोहब्बत करेगा, और दूसरा क्या है कि गुनाह माफ कर देगा, और शर्त क्या है, अगर तुम रसूल की पैरवी करो, मेरी पैरवी करो। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जो हैं, अगर ये जैसे रबीउल अव्वल से अवाम को एक खास लगाव है, तो इसको हम दावा का जरिया बनाएं, उनको भटकाने का जरिया ना बनाएं। अगर कहीं जाएं तो उनको बताएं कि हाँ आइए हम देखते हैं सीरत रसूल अल्लाह की, आइए हम देखते हैं कि अतात रसूल किसे कहते हैं, फिर इस पर बात करें कि मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे, फिर इस पर बात करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई आजम थे, आपकी सबसे बड़ी सुन्नत क्या है कि इंसान हदायत पा जाए, फिर हम इससे बात कर सकते हैं आपका इखलाक कैसा था। लेकिन अफसोस कि अहले मक्का ने रसूल का इनकार किया, और हर कौम ने नजीर का इनकार किया, और आज उम्मत मुस्लिमा भी जो है वो इनकार के रास्ते पर चल रही है। तो जबान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और हाथों से फिर चूमा जाए, मोहब्बत इसको नहीं कहते, मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं ईमान लाने को, मोहब्बत कहते हैं हिजरत के सफर में साथ देने को, मोहब्बत कहते हैं बदर के मैदान में रसूल अल्लाह के साथ उतरने वाले सहाबा के तर्ज अमल को और सहाबियात को, है ना। तो मोहब्बत देखनी है तो बिलाल हबशी के अहद अहद को देखिए, मोहब्बत देखनी है तो फिर किसको देखें, हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हा के फकर को देखें, मोहब्बत देखनी है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इल्म दोस्ती को देखें, मोहब्बत देखनी है तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो है उनकी जो है वो हिजरत के वाक्य को देखें और अतात को देखें। तो असल बात क्या है कि मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें हैं, अतात की बहुत सी दास्तानें हैं। तो आइए हम इक्तदा करें रसूल की, आइए उनके उसवा जो है उस पर चलें, और हम रसूल का इनकार ना करें। तो ये हैं वो आयात जो हमारी जिंदगी पर, गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे डालती हैं। और मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूं कि आप और मैं या दुनिया में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ लिया और समझ लिया, उसके बाद भी अगर उन्होंने कुरान की आयात को सही तरह का दुनिया में ना फैलाया, तो उनसे ना दोहरी पूछ होगी, उनसे दोहरी पूछ होगी। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें पता था कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, फिर तुम उस पर क्यों चले? तो हमें क्या करना चाहिए कि सही तरह से कुरान जो है उस पर खुद अमल करें जितना जितनी समझ आ गई है, और दूसरों को भी हाँ के पुकारे इसकी दावत दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।